एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो समुंदर की लहरों पर लिखी गई है, मलयालम साहित्य का एक मील का पत्थर, थकाजी शिवशंकर पिल्लई का उपन्यास चेम्मीन।
हाँ, चेम्मीन मतलब झींगा। नाम सुनने में कितना साधारण है, पर कहानी तो समंदर जैसी ही है, गहरी, बेचैन करने वाली। और थकाजी साहब, ज्ञानपीठ विजेता, उन्होंने केरल के मछुआरों, किसानों की जिंदगी को जैसे कागज पर उतार दिया।
बिल्कुल, उनकी लेखनी में वो मिट्टी की महक है। और चेम्मीन जो 1956 में आया, वो सिर्फ एक उपन्यास नहीं था, वो तो एक घटना थी।
सही कहा, साहित्य अकेडमी मिला, फिर ढेरों भाषाओं में अनुवाद हुआ, और वो फिल्म 1965 वाली, उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आज भी लोग उसे याद करते हैं, थकाजी की सबसे मशहूर कृति मानी जाती है।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 50 के दशक में लिखी कहानी आज भी हमें क्यों इतनी अपनी सी लगती है, क्यों झकझोड़ती है?
शायद इसलिए कि ये उन बुनियादी सवालों से टकराती है जो हमेशा से इंसान के साथ रहे हैं, प्यार, समाज के नियम, लालच, किस्मत।
तो आज हम इसी के तह तक आने की कोशिश करेंगे। चेम्मीन की पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे, किरदारों के दिल में झांकेंगे, उनके जज्बातों को समझेंगे।
हाँ, और ये भी देखेंगे कि कैसे एक छोटे से मछुआरे गांव की कहानी इंसानी जिंदगी के बड़े संघर्षों को दिखाती है।
हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उसके असल मतलब तक पहुंचना है। तो चले फिर केरल के उस तट पर।
बिल्कुल, अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा मछुआरा गांव, अराया समुदाय का गांव। यहाँ जिंदगी की लय समुंदर तय करता है,
और समुंदर से भी ज्यादा, वहां के पुराने विश्वास।
हाँ, वो गहरे बैठे हुए अंधविश्वास, और सबसे बड़ा विश्वास है कडलम्मा का, यानी समुद्रमा।
कडलम्मा, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। क्या है ये विश्वास?
मान्यता ये है कि जो मछुआरा समंदर में गया है, उसकी सलामती, उसकी जान, किनारे पर बैठी उसकी पत्नी की पवित्रता और वफादारी पर टिकी है।
कमाल है, मतलब पत्नी की निष्ठा पति की जिंदगी की गारंटी है।
हाँ बिल्कुल, अगर पत्नी का मन जरा भी भटका, यहाँ देख के ख्यालों में भी, तो कडलम्मा नाराज हो जाती हैं।
और उसका नतीजा?
नतीजा भयानक, पति की मौत, समंदर उसे निगल जाता है। सोचिए कितना दबाव होगा, खासकर औरतों पर।
यकीनन, ये विश्वास तो जैसे कहानी की रीढ़ है, और इसी विश्वास और इंसानी इच्छाओं के बीच एक लगातार कश्मकश चलती रहती है।
जी, और इसी कश्मकश के बीच पनपता है कहानी का मुख्य संघर्ष, एक ऐसा प्यार जिसे समाज कभी मंजूरी नहीं दे सकता।
करुथम्मा, एक हिंदू मछुआरे चंबन कुंजू की बेटी, और परेकुटी, एक नौजवान मुस्लिम मछली व्यापारी।
उनका प्यार गहरा है, मासूम है, लेकिन धर्म अलग, समुदाय अलग, दीवारें बहुत ऊंची हैं। उनका रिश्ता जैसे शुरू से ही एक शापित सा है।
और उपन्यास यही सवाल पूछता है, क्या ये इंसानी जज्बात, ये प्यार, समाज के बनाए नियमों, लालच के जहर और इस गहरे बैठे मिथक के सामने टिक पाएगा?
हाँ, ये देखना बहुत दिलचस्प है। चलिए किरदारों से मिलते हैं। करुथम्मा, कहानी की नायिका, जिंदा दिल, खूबसूरत,
जिसकी आंखें शायद समंदर की तरह गहरी हैं,
और दिल में परीकुट्टी के लिए एक अनकहा सा लगाव।
बिल्कुल,
और परीकुट्टी वो एक भला इंसान है, नरम दिल। करुथम्मा के पिता चेम्बन कुंजू की मदद भी करता है, क्योंकि वो करुथम्मा से बेपनाह मोहब्बत करता है।
उसकी मोहब्बत में एक खामोशी है, एक ठहराव सा है शायद।
हाँ, और फिर है चेम्बन कुंजू, करुथम्मा का पिता। उसकी रगों में एम्बिशन दौड़ता है, एक ही धुन है, अपनी नाव, अपना जाल।
ये नाव और जाल उसके लिए सिर्फ कमाने का जरिया नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उसकी आजादी है, उसकी इज्जत है, और इसी सपने का लालच वही पूरी कहानी की त्रासदी की जड़ बनता है।
ओह,
और माँ, करुथम्मा की माँ चक्की, चक्की वो बेचारी परंपरा और डर के बीच पिसती है। उसे दिखता है कि बेटी का ये रास्ता कहाँ जा रहा है, समाज का डर उसे खाए जाता है, पर वो बेबस है।
हाँ, तो कहानी की शुरुआत में हम करुथम्मा और परीकुट्टी के बीच ये जो मासूम सा प्यार पनप रहा है, उसे देखते हैं।
हाँ, वो छुप छुप कर मिलना, इशारों में बातें, लेकिन गांव छोटा है, बातें फैलने लगती हैं, चिंता बढ़ती है।
और उधर चेम्बन कुंजू अपने नाव और जाल के सपने में खोया है।
बिल्कुल, और वो देखता है कि परीकुट्टी उसकी बेटी के लिए क्या महसूस करता है, तो वो इसका फायदा उठाता है।
कैसे?
वो परीकुट्टी से नाव खरीदने के लिए पैसे उधार लेता है और उसे ये उम्मीद दिलाता है कि शायद इस मदद के बदले करुथम्मा उसे मिल जाए। साफ साफ नहीं कहता, पर इशारा ऐसा ही होता है।
और परीकुट्टी?
वो तो प्यार में है, वो मान जाता है। ये जो सौदा होता है ना, यहीं से कहानी का ढलान शुरू होता है। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं, ये भरोसे का, जज्बातों का सौदा है।
एक तरह का मूल पाप कह सकते हैं इसे।
हाँ बिल्कुल। जैसे ही चेम्बन कुंजू को नाव मिलती है, वो बदल जाता है। अब परीकुट्टी उसके लिए कुछ नहीं।
और करुथम्मा की अपवित्रता की अफवाहें
वो जोर पकड़ने लगती हैं। समाज का दबाव बढ़ता है। चेम्बन कुंजू पर अपनी इज्जत बचाने का भूत सवार हो जाता है।
तो वो क्या करता है?
वो करुथम्मा की शादी तय कर देता है पलनी नाम के एक मछुआरे से। पलनी दूसरे गांव का है, अनाथ है, ताकि कोई अतीत ना कुरेदे।
ओह, करुथम्मा के लिए तो ये जैसे दुनिया उजड़ने जैसा होगा।
बिल्कुल, वो पूरी तरह टूट जाती है। परीकुट्टी से उसकी आखिरी मुलाकात बहुत मार्मिक है, बस खामोशी, आंसू। फिर शादी हो जाती है, करुथम्मा अपना गांव, अपना प्यार सब छोड़कर चली जाती है।
और परीकुट्टी का क्या होता है?
परीकुट्टी वो तो बस टूट जाता है, दिल से भी और पैसे से भी। वो अक्सर समंदर किनारे बैठकर दर्द भरे गीत गाता रहता है।
कहानी आगे बढ़ती है, करुथम्मा का नया जीवन शुरू होता है पलनी के साथ। ये आसान नहीं रहा होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत तनाव भरी थी। पलनी के मन में शक था, क्योंकि उस तक भी अफवाहें पहुंची थीं। करुथम्मा अपराध बोध में जीती थी और काडलम्मा का डर तो था ही।
हर पल ये डर कि उसकी वजह से पति पर कोई आंच ना आ जाए।
हाँ, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है, पलनी करुथम्मा की अच्छाई देखता है, उसे प्यार करने लगता है। उन दोनों का एक बच्चा भी होता है। एक बहुत नाजुक सी खुशी उनके जीवन में आती है।
लेकिन क्या वो परीकुट्टी को पूरी तरह भूल पाती है?
शायद नहीं। परीकुट्टी के वो उदास गीत हवा में तैरते रहते हैं, एक याद की तरह, एक कसक की तरह। और पलनी के मन में भी शायद शक का कांटा पूरी तरह कभी नहीं निकलता।
और उधर चेम्बन कुंजू, उसका क्या चल रहा है?
चेम्बन कुंजू का तो सितारा बुलंद है। एक नाव से कई नावें हो गई, व्यापार बढ़ गया, खूब पैसा कमाया उसने।
लेकिन किस कीमत पर?
हाँ, यही सवाल है। जैसे जैसे पैसा बढ़ा, वो और ज्यादा बेरहम और ज्यादा कंजूस होता गया। अपनी पत्नी चक्की की बीमारी में भी उसने कोई परवाह नहीं की।
और फिर चक्की की मौत हो जाती है।
हाँ, और उसकी मौत जैसे घर की आत्मा की मौत होती है। चेम्बन कुंजू का छोटा बेटा पंचमी, जो बाप के इस बर्ताव से नफरत करता है, वो घर छोड़कर चला जाता है।
तो अंत में चेम्बन कुंजू के पास क्या बचता है?
पैसा, बहुत सारा पैसा, नावे, जाल, पर कोई अपना नहीं। बिल्कुल अकेला। समाज भी उससे नफरत करता है। लालच ने उसे अमीर तो बनाया, पर इंसानियत छीन ली।
कितना भयानक। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो तूफान वाली रात।
हाँ, एक रात समंदर जैसे आपे से बाहर हो जाता है। भयंकर तूफान आता है। पल्लिनी और बाकी मछुआरे समंदर में होते हैं, मौत से लड़ रहे होते हैं।
और किनारे पर करुथम्मा?
करुथम्मा बेचैन है, उसे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वो भागती हुई समंदर किनारे जाती है और वहां उसे परीकुट्टी मिलता है।
जैसे किस्मत ने उन्हें मिलाया हो।
हाँ, तूफान के शोर में, अंधेरे में, एक लावारिस नाव में वो दोनों मिलते हैं। बरसों से दबा हुआ प्यार, दर्द, निराशा, सब कुछ जैसे एक पल में बाहर आ जाता है।
ये क्या था, जुनून या हार मान लेना?
शायद दोनों, शायद नियति के आगे समर्पण। बरसों का बांध टूट जाता है।
और उसी वक्त समंदर में क्या हो रहा होता है?
उसी वक्त गहरे समंदर में पलनी की नाव एक बहुत बड़ी शार्क से टकराती है, जिसे कडुलम्मा का दूत माना जाता है। पलनी लड़ता है, पर एक लहर उसकी नाव पलट देती है।
तो मिथक सच हो गया।
हाँ, किनारे पर पत्नी का विच्छेदन और समंदर में पति की मौत, कडुलम्मा का इंसाफ, या शायद समाज के डर का नतीजा।
अगली सुबह का मंजर क्या होता है?
अगली सुबह गांव वालों को करुथम्मा और परीकुट्टी के शव मिलते हैं, समंदर किनारे, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए, उनका आखिरी आलिंगन।
और पलनी?
दूर समंदर में पलनी की उल्टी हुई नाव के पास एक शार्क का पंख चक्कर काटता दिखता है। त्रासदी पूरी हो जाती है।
रोंगटे काड़े हो जाते हैं सुनके। हर किरदार का सफर इतना इतना दुखद है। करुथम्मा एक मासूम लड़की से शुरू होकर कैसे समाज और किस्मतों से तोड़ देते हैं।
हाँ, उसकी आत्मा का धीरे धीरे मर जाना, बहुत तकलीफ दे है।
और परिकुट्टी, वो तो जैसे दुख का मूर्त रूप बन गया। सच्चा प्यार किया पर समाज के आगे लाचार रहा।
उसकी वो खामोश पीड़ा, वो इंतजार दिल को छू जाता है। क्या उसे लड़ना चाहिए था या शायद उसके पास कोई चारा ही नहीं था?
चंबन कुंजू का तो साफ है, लालच कैसे इंसान को अंदर से खा जाता है। संघर्ष करने वाले मछुआरे से एक अकेला नफरत किया जाने वाला अमीर आदमी।
बिल्कुल, उसने भौतिक रूप से सब पाया पर आत्मिक रूप से कंगाल हो गया।
और पलनी, वो तो बेचारा बस शिकार बना। उसने प्यार किया, शक किया, भरोसा किया और अंत में मिथक का शिकार हो गया। उसकी क्या गलती थी?
कोई गलती नहीं, सिवाय इसके कि वो समाज का हिस्सा था। उसकी मासूमियत ही उसकी त्रासदी को और गहरा बना देती है।
इन किरदारों के जरिए थाकाजी ने कितने बड़े मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले तो यही परंपरा और मिथक का अत्याचार। ये कड़लम्मा वाला मिथक कैसे ये औरतों को कंट्रोल करने का जरिया बन जाता है।
जी हाँ, जहाँ ख्याल का भटकना भी मौत ला सकता है, समंदर जिंदगी भी देता है और मौत भी। वो कहते ना, मछुआरे की पत्नी, उसकी पवित्रता ही उसकी सुरक्षा है। कितना वजन है इस एक वाक्य में।
बहुत ज्यादा। और दूसरा बड़ा मुद्दा, लालच कैसे वो इंसान को सड़ा देता है। चंबन कुंजू की कहानी, पैसा आया पर रिश्ते गए, सुकून गया।
हाँ, उसका वो फलसफा कि इंसान को अपना स्वार्थ देखना चाहिए, उसे कहीं का नहीं छोड़ता।
और वो निषिद्ध प्रेम करुथम्मा और परिकुट्टी का, इतना पवित्र दिखाया है पर समाज की नजर में गुनाह। ये जुनून और कर्तव्य की वो पुरानी लड़ाई है।
बिल्कुल, करुथम्मा का वो अंदरूनी संघर्ष, क्या मैं एक पवित्र पत्नी हूं, मेरी आत्मा तो ये दिखाता है कि नियम शरीर को भले बांध लें, मन को कैसे रोकेंगे।
प्रकृति का रोल भी बहुत बड़ा है। समंदर, कड़लम्मा, खुद एक किरदार की तरह।
हाँ, वो देती भी है, लेती भी है। वो खामोश भी है और कहर भी ढाती है। और कहानी ये सवाल भी छोड़ जाती है कि अंत में जो हुआ वो कड़लम्मा का श्राप था या महज एक संयोग।
दिया पी और इच्छा के बीच की वो महीन रेखा और थगाजी साहब का लिखने का अंदाज कमाल है। वो जैसे हमें किरदारों के मन के अंदर ले जाते हैं।
हाँ, और भाषा में एक रवानी है, एक संगीत है, समंदर की लहरों जैसा। और वो प्रतीक, नाव, जाल, शार्क, तारे, सब जैसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं।
नाव और चाल चंबन कुंजू की महत्वाकांक्षा बन गए, शार्क कड़लम्मा का गुस्सा, तारे शायद करुथम्मा के अधूरे सपने,
और कड़लम्मा का मिथक तो पूरी कहानी पर एक पूर्वाभास की तरह छाया रहता है।
और साथ ही केरल के मछुआरा जीवन का इतना सच्चा चित्रण, लगता है हम वहीं हैं उनके बीच।
बिल्कुल, इसीलिए ये उपन्यास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। पढ़ते हुए एक उदासी घेर लेती है, एक बेबसी सी लगती है।
किरदारों से हमदर्दी होती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या आज भी हम ऐसे ही डर और नियमों के बीच नहीं जी रहे।
शायद यही चेमिन की सबसे बड़ी खूबी है। ये हमें दिखाती है कि जब समाज की बनाई कठोर मान्यताएं प्यार जैसी बुनियादी इंसानी भावनाओं से टकराती हैं, तो नतीजा कितना कितना विनाशकारी हो सकता है।
और ये आज भी हमें इसलिए छूती है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे बड़ी सामाजिक ताकतें परंपरा, धर्म, लालच आम लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं। ये हमें अपनी बनाई दीवारों पर सवाल उठाने को मजबूर करती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।